بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، آج قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 14 اور 15 کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری قاسم رضی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیوان ہے، لوگوں کے لیے پتنیوں، سنتانوں، سونے چاندی سے بٹورے ہوئے دھن، اچھے گھوڑوں، مویشیوں تتھا کھیتیوں سے پریم کو اچھا دکھایا گیا ہے۔ ये सब सांसारिक जीवन की नश्वर वस्तुएं हैं और अल्लाह के पास अच्छा प्रतिफल है। हे पैगंबर, कह दीजिए कि मैं तुम्हें इससे अच्छी वस्तुओं की खबर देता हूँ। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए अल्लाह के पास ऐसे बाग हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और वहाँ वे सदैव रहेंगे। उनकी पत्नियाँ होंगी और अल्लाह की प्रसन्नता होगी और अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है, मार्च की 9, रजब की 25 और इस्फंद माह की 19 तारीख। कार्यक्रम में हम आपको पहले विश्व समाचार सुनवाएंगे, उसके बाद राजनीतिक चर्चा होगी। राजनीतिक चर्चा के उपरांत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर विशेष कार्यक्रम पेश किया जाएगा और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से। श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने विभिन्न मोर्चों पर लोहा लेने वाली ईरानी महिलाओं की प्रशंसा की है। तेहरान का कहना है कि किसी देश में पैसे को दूसरे देशों में ब्लॉक करना अंतर्राष्ट्रीय डकैती है। भारत ने चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय देशों के लिए संपर्क राजमार्ग बताया है। बगदाद के निकट काजमिया क्षेत्र में शिया मुसलमान श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमला किया गया। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनेई ने इतिहास बनाने वाले फरिश्तों की सेना के बलिदानों की प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से शहीद होने वाली महिलाओं, 8 वर्षीय ईरान इराक युद्ध के दौरान घायल होने वाली जांबाज महिलाओं और कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्रंट पर चिकित्सा सेवाएं देने वाली महिला चिकित्सा कर्मियों की प्रशंसा की। वरिष्ठ नेता ने सन 1979 में इस्लामी क्रांति के दौरान और इराक द्वारा थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के काल में अहम भूमिका निभाने वाली ईरानी महिलाओं की याद में मंगलवार को आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस इतिहास बनाने वाले फरिश्तों की सेना के नाम अपने संदेश में ये टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट पर अपनी सेवाएं देने वाली महिलाओं की भी प्रशंसा की। इस संदेश में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना था कि ईमान की शक्ति ने ईरानी महिलाओं के लिए महान संघर्ष का रास्ता खोल दिया और उन्होंने कठिन क्षेत्रों में साहस और बलिदान के साथ अद्भुत और अनोखे दृश्य पेश किए। ईरान का कहना है कि किसी भी देश की संपत्ति को दूसरे देश में ब्लॉक करना अंतर्राष्ट्रीय डकैती जैसा है। ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य का यह कहना है कि अमरीकी दबाव के भय में दक्षिणी कोरिया ने ईरान के पैसों को ब्लॉक कर रखा है। जलील रहीमी जहानाबादी ने कहा कि यह खुली हुई अंतर्राष्ट्रीय डकैती है। उनका कहना था कि दक्षिणी कोरिया ने ईरान के साथ अपने संबंधों को अमरीका से जोड़ दिया है, जो तार्किक नहीं है। जहानाबादी ने कहा कि यह काम दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रीय हितों के लिए भी अच्छा नहीं है। उनका कहना था कि इसका नुकसान कोरिया वालों को کو بھگتنا ہوگا، کیونکہ ایران پشچمی ایشیا کا ایک پربھاوشالی دیش ہے۔ جلیل رحیمی نے کہا کہ یہ پیسہ ایرانی جنتا کا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو پرمانو سمجھوتے کے پنرجیوت ہونے سے سب سے زیادہ چنتا ہے، کیونکہ مدھیہ پورو میں استھرتا کی سب سے ادھک اس شما کیجیے گا کیونکہ مدھیہ پورو میں استھرتا سے سب سے ادھک لابھ بھی اسی کو ہوتا ہے۔ ایرانی سرکار کے پروکتا نے منگلوار کو تہران میں میڈیا بریفنگ میں تیل اویو کی اس دھمکی کے بعد یہ ٹپنی کی، جس میں کہا گیا تھا کہ تیل اویو نے ایران کے پرمانو سنیتروں پر سمبھاوت حملے کی یوجنا کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زائونی شاسن کو جے سی پی او اے کے پھر سے زندہ ہونے سے سب سے ادھک چنتا ہے۔ غورطلب ہے کہ پچھلے ہفتے سینیہ معاملوں میں اسرائیلی منتری نے کہا تھا کہ ایران کے پرمانو سنیتروں پر سمبھاوت حملوں کے لیے زائونی شاسن اپنی یوجنا کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ ایران کے سنسد سبھاپتی نے انتراشٹری معاملوں کے صلاح کار نے شیتر میں امریکہ کی غیر رچناتمک نیتوں کی نندا کی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے لبنان کے پریورتنوں کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی نیتیاں شیتریہ دیشوں کو کمزور کرنے والی ہیں۔ انہوں نے لبنان کے عمل آندولن کے پرتندھی سے تہران میں بھیٹ کے دوران ایران تتھا لبنان کے میتریپورن سمبندھوں کی اور سنکیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان ایک پربھاوشالی دیش ہے۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ لبنان کی آرتھک ایوم راجنیتک استھرتا پورے شیتر کے ہت میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرتیرودھ کے سمبندھ میں بھی لبنان اگریم مورچے پر ہے۔ بھارت نے چابہار بندرگاہ کو سمپرک راج مارگ بتایا ہے۔ بھارت نے چابہار بندرگاہ کے مہتو کے درشٹیگت اس کو شیتری دیشوں کے لیے سمپرک راج مارگ بتایا۔ ایران میں بھارت کے راجدوت نے کہا ہے کہ بھارت اور ایران کے سہیوگ سے چابہار بندرگاہ شیتری دیشوں کے لیے ایسا سمپرک راج مارگ بن سکتا ہے جو شیتری وکاس کی بھومکا نبھا سکتا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے انوسار بھارت کے راجدوت نے سوموار کو تہران میں چیمبر آف کامرس کی میٹنگ میں کہا کہ حالیہ ورشوں میں بھارت کی اور سے چابہار بندرگاہ کے مادھیم سے ایران اور افغانستان کے لیے مانوی سہایتا بھیجی گئی۔ انہوں نے سن 2016 میں بھارت کے پردھان منتری کی ایران یاترا اور اس یاترا کے دوران چابہار بندرگاہ کے وکاس کے ادیش سے ایران بھارت اور افغانستان کے بیچ ہونے والے سمجھوتے کا بھی الیکھ کیا۔ بھارت کے مہاراشٹر راجیہ کے کئی شہروں میں کورونا وائرس کا قہر فی الحال تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹھانے میں کووڈ 19 کے معاملے بڑی سنکھیا میں سامنے آ رہے ہیں۔ سوموار کو ٹھانے میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی گھوشنا کی گئی۔ ٹھانے میں 11 ہاٹ اسپاٹ کی پہچان کی گئی، جہاں 13 مارچ سے 31 مارچ کے بیچ لاک ڈاؤن لگے گا۔ لاک ڈاؤن کا آدیش وہاں کے نگر نگم کے کمشنر نے جاری کیا۔ اس آدیش میں کہا گیا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران کووڈ 19 کے معاملے بہت تیزی سے بڑھے ہیں، وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عراق میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شردھالوؤں پر حملہ کیا گیا۔ عراق کی راجدھانی بغداد کے نکٹ کاظمیہ شیتر میں شیعہ مسلمانوں کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے کا درشن کرنے والوں پر حملہ کیا گیا۔ ایران پریس کے انوسار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہادت دیوس کے افسر پر سوموار کی رات ہونے والے اس حملے میں کئی شردھالو ہتاحت اور گھائل ہوئے ہیں۔ سوتروں نے بتایا ہے کہ یہ حملہ ہتگولے سے کیا گیا تھا۔ کچھ سوتروں کے انوسار شردھالوؤں پر ہتھگولہ پھینکنے والا آتنکوادی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عراق سے آتنکوادی سنگٹھن داعش کے انت کے باوجود اس کے بچے کھچے سدسیہ اس دیش میں حملے کرتے رہتے ہیں۔ لبنان میں اسرائیل کے ایک ڈرون ویمان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لبنان نیشنل نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ لبنانی سینا کی ایئر ڈیفنس یونٹ نے اسرائیل کے ایک ڈرون ویمان کو نشانہ بنایا جو میسول جبل نامک شیتر میں استھت ایک سینیہ چھاؤنی کے اوپر اڑان بھر رہا تھا۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے یدھک ویمانوں اور ڈرون ویمانوں نے پچھلے سپتاہوں میں کئی بار لبنان کی وایو سیما کا الگھن کیا ہے۔ سن 2006 میں 33 دیوسیہ یدھ کے انت کے بعد سرکشا پریشد نے پرستاؤ سنکھیا 1701 پارت کر کے اسرائیل سے یہ مانگ کی تھی کہ وہ لبنان کے خلاف شترتا پورن کاروائی سے بچے، لیکن اسرائیل سنیکت راشٹر سنگھ کے پرستاؤں پر دھیان دیے بنا اسرائیل لبنان کی وایو سیما کا الگھن کرتا رہتا ہے۔ لبنان کے حزب اللہ آندولن نے ایک بیان جاری کر کے عیسائیوں کے دھرم گرو پوپ فرانسس کی عراق یاترا اور ورشٹھ شیعہ دھرم گرو سے ان کی بھیٹ سہت یاترا کی اپلبدھیوں کی سراہنا کی ہے۔ حزب اللہ نے اپنے اس بیان میں پوپ فرانسس کی عراق یاترا کی سراہنا کے ساتھ یہ آشا پرکٹ کی ہے کہ یہ یاترا عراق میں راشٹری ایکتا اور دیش کی اکھنڈتا میں مضبوطی کا آرمبھ بنے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کا یہ ماننا ہے کہ عراق نے پچھلے 2 دشکوں کے دوران بہت کالے دنوں اور یدھوں کا سامنا کیا، جو واسطو میں وہ یدھ ہیں جو امریکی اتکرمن کاریوں اور داعشی آتنکوادیوں نے اس دیش پر تھوپ دیے تھے۔ امریکی ودیش منتالے کے پروکتا نے کہا ہے کہ ان کا دیش ایران کی اور سے سارتھک سجھاؤ کی پرتیکشا کر رہا ہے۔ امریکی ودیش منتالے کے پروکتا نے سوموار کو ایک پترکار سمیلن میں کہا کہ امریکہ نے پرمانو سمجھوتے کے سبھی پکشوں کے ساتھ ایک بیٹھک کا پرستاؤ دیا ہے اور ہمیں ایران کی اور سے سارتھک پرستاؤ کی پرتیکشا ہے۔ امریکی ودیش منتالے کے پروکتا نے ایران کی اور سے سموردھن کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس پرکار کی چنوتیوں کی وجہ سے امریکہ کی چنتا ہر دن بڑھ رہی ہے۔ برٹن کی رائٹرز نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ IAEA نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے نتنز پرمانو پرتشٹھان میں آدھونک سینٹریفیوج مشینوں سے سموردھن کا کام شروع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شوتو راج نیتک چرچا کے دینک کارکرم میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ ایران کے پرترکشا منتری بریگیڈیئر جنرل امیر ہاتھوی نے تیران کے خلاف زانی شاسن کے نیتاؤں کی حالیہ دھمکیوں کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی پرکار کے دوسساہس کی استھتی میں اسرائیل کو کرارا جواب دیا جائے گا۔ یمنی سینا نے 14 ڈرون ویمانوں اور 8 بیلسٹک میزائلوں سے سعودی عرب کی آرامکو کمپنی اور سعودی عرب کے پورو میں استھت دمام چھیتر میں کچھ سینے ٹھکانوں اور جیزان ایوم اسیر پر حملہ کیا۔ بجٹ سطر کے دوران بھارت کے وپکشی دلوں نے آج بھی ایندھن کے مولیوں میں وردھی کو لے کر ہنگامہ کیا، جس کے کارن دونوں سدنوں کی کاروائی پورے دن کے لیے استھگت کر دی گئی۔ کل بھی ایندھن کی قیمتوں میں وردھی کو لے کر وپکشی دلوں نے ہنگامہ کیا تھا اور سرکار کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ یہ تھے ہماری آج کی چرچا کے وشے۔ شوتاؤ ایران کے پرترکشا منتری بریگیڈیئر جنرل امیر ہاتھوی نے تہران کے خلاف زانی شاسن کے نیتاؤں کی حالیہ دھمکیوں کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی پرکار کے دوسساہس کی حالت میں اسرائیل کو کرارا جواب دیا جائے گا۔ سمیکشا پیش کریں ساتھی حسن عباس۔
رکشا منتری بریگیڈیئر جنرل امیر ہاتھوی نے تہران کے خلاف زانی شاسن کے ادھیکاریوں کی حالیہ دھمکیوں کی اور اشارہ کرتے ہوئے कहा है कि इस शासन के अधिकारी अर्थहीन दावे करते हैं और ईरान को धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि ये बातें हताशा और निराशा का चिन्ह हैं। ईरान की इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता ने उसी वर्ष जब ज़ायोनी अधिकारी इस प्रकार की गलत बातें अधिक करते थे, कहा था कि ज़ायोनी शासन हमारा असली दुश्मन नहीं है। वे ईरान की इस्लामी व्यवस्था को कहाँ फेंकना भी नहीं चाहते और वे जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो जान लें कि अगर उन्होंने अधिक दुस्साहस किया तो तेल अवीव और हैफा को हम मिट्टी के ढेर में बदल देंगे। अमरीका और ज़ायोनी शासन ने ईरान की इस्लामिक क्रांति की सफलता के आरंभ से आज तक हमेशा ईरान को धमकी दी है और उनका लक्ष्य ईरान की इस्लामी व्यवस्था को आघात पहुंचाना है, परंतु ईरान के मुकाबले में तेहरान के दुश्मनों को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। ईरान की इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता के एक सलाहकार हुसैन देहकानी ने ज़ायोनी शासन की धमकियों का विश्लेषण करते हुए कहा कि अगर कोई हमला करना चाहता है और ईरान को आघात पहुंचाना चाहता है तो वो पहले से अपने इरादे का ऐलान नहीं करता, परंतु जब कुछ करना नहीं होता है तो वो हो हल्ला करता है और इस तरीके से वो राजनीतिक हितों को साधना चाहता है। बहरहाल, जैसा कि ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी ने कहा है, ज़ायोनी शासन कभी कभी अपनी औकात से बड़ी बातें करता है और उत्तेजक कार्रवाइयां भी करता है ताकि वो ये दिखाए कि वो स्थायित्व की स्थिति में है, जबकि ज़ायोनी शासन के अवैध अस्तित्व की बुनियाद हत्या, धमकी, युद्ध और फर्जी संकट उत्पन्न करने पर रखी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज़ायोनी अधिकारियों को जान लेना चाहिए कि उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा।
यमनी सेना ने 14 ड्रोन विमानों और 8 बैलिस्टिक मिसाइलों से सऊदी अरब की आरामको कंपनी और सऊदी अरब के पूर्व में स्थित दमाम इलाके में कुछ सैन्य ठिकानों और जीजान एवं असीर पर भी हमला किया। अब्दुल्ला यूसुफी की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही कमर अब्बास।
सऊदी अरब के अंदर यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों का हमला। यमनी सेना ने 14 ड्रोन विमानों और 8 बैलिस्टिक मिसाइलों से सऊदी अरब की आरामको कंपनी और सऊदी अरब के पूर्व में दम्माम क्षेत्र में कुछ सैन्य ठिकानों और जीजान एवं मसीर पर भी हमला किया। ये हमला प्रतिरोधक 6 शीर्षक के अंतर्गत किया गया था और बेहद व्यापक समझा जा रहा है। यमनी सेना ने संयुक्त रूप से मिसाइलों, ड्रोन विमानों से सऊदी अरब के अंदर सफल हमला किया। इस हमले में सऊदी अरब की रासुत तनूरा बंदरगाह में आरामको कंपनी को और इसी प्रकार सऊदी अरब के पूर्व में स्थित दम्माम क्षेत्र में कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब हम प्रतिरक्षात्मक स्थिति से बाहर निकलकर हमला करने की स्थिति में आ गए हैं। ये प्रतिरोधक शक्ति व हमले नेटो और उनमें सर्वोपरि अमेरिका के लिए संदेश है कि जो सब सऊदी अरब का समर्थन कर रहे हैं। आरामको को लक्ष्य बनाने का एक स्पष्ट संदेश है, क्योंकि आरामको को अमेरिकी शैली में बनाया गया है और वो सऊदी अरब का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और पश्चिम में ज़ायोनी लॉबी का महत्वपूर्ण ठिकाना है। ये बहुत बड़ा हमला है जिसमें सऊदी अरब के महत्वपूर्ण शहरों को लक्ष्य बनाया गया है। सऊदी अरब के लगभग 90% तेल का निर्यात आरामको से होता है। सऊदी अरब के अंदर कुछ सूत्रों ने बताया कि यमनी सेना के ये ताज़ा हमले सऊदी अरब के अंदर कुछ हवाई अड्डों पर उड़ानों के रद्द होने का कारण बन गए। सऊदी अरब के मध्य रासुल तनूरा और इसी प्रकार इस देश के उत्तर और दक्षिण में कुछ लक्ष्यों को ठिकाना बनाया गया। इस समय हमने दुश्मन के नए सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाना आरंभ कर दिया है। इस बंदरगाह को सऊदी अरब के तेल और पेट्रोकेमिकल वस्तुओं के निर्यात का महत्वपूर्ण केंद्र समझा जाता है। सारांश यह है कि इस हमले के बाद सऊदी अरब को जान लेना चाहिए कि यमनी सेना धमकियों को व्यवहारिक बनाएगी। सऊदी अरब ने यमन का जो परिवेष्टन कर रखा है और यमनी जनता के खिलाफ जो हमले कर रहा है, यमनी सेना के ये हमले उसके अतिक्रमण के जवाब में किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के युद्ध विमानों ने यमन की राजधानी सना और तौस प्रांत में अपंग बच्चों को ले जा रही एक बस पर भी हमला किया। अब्दुल्लाह यूसुफी, IRIB, सनआ।
बजट सत्र के दौरान भारत के विपक्षी दलों ने ईंधन के मूल्यों में वृद्धि को लेकर हंगामा मचाया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाहियां पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गईं। कल भी ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विपक्षी दलों ने हंगामा मचाया और सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। पूरी जानकारी के साथ दिल्ली से शमशाद काजमी।
भारत में बजट सत्र के दूसरे चरण की बैठक के दूसरे दिन भी विपक्ष ने ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के विरुद्ध जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियां आखिरकार पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गईं। कल भी महंगाई को लेकर संसद में हंगामा हुआ था और राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाहियां आरंभ होते ही विपक्षी दलों ने महंगाई को लेकर हंगामा किया और सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्यों में निरंतर वृद्धि को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी लोकसभा में काम रोक कर पेट्रोल, डीजल और LPG गैस के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा कराने की मांग की थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने सांसदों से सदनों की कार्यवाहियां शांतिपूर्ण रूप से चलाने का आह्वान किया, जिसे विपक्षी सांसदों ने अनसुना कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उसकी बातों को प्रसारित नहीं किया जा रहा है। ईंधन के मूल्यों में प्रतिदिन वृद्धि पर आम लोगों में भी चिंता पाई जाती है।
फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और केवल फ्यूल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, राशन के रेट बढ़ रहे हैं। सरकार की सीधी सीधी गरीब विरोधी जो नीतियां हैं और वो सीधा साफ महिलाओं को भी घर कर चलाने के अंदर इतनी तकलीफ हो चुकी है।
60 के आसपास जब पेट्रोल था तो उसमें हमारी जॉब सैलरी भी उतनी थी, तब भी हमारा कुछ बचता था थोड़ा सा। हमारा ये कि पेट्रोल 60 या 50 के आसपास था, लेकिन अभी क्या है कि 100 के आसपास पहुंचा है पेट्रोल, बट हमारी सैलरी भी उतनी ही है अभी तक।
पेट्रोलियम पदार्थ इस समय GST के दायरे से बाहर है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि इसे GST के दायरे में लाया गया तो पेट्रोल का मूल्य 75 रुपए प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 68 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा, जो इस समय क्रमशः दिल्ली में 91 रुपए 17 पैसे और 86 रुपए है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
श्रोताओ, अमेरिका में इस समय एक रोचक विषय में करोड़ों लोग व्यस्त हो गए हैं, जिनमें से एक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में अदालती कार्रवाई है। नजफजादे की रिपोर्ट पेश करें साथ ही रविश जैदी।
इस समय अमेरिका सहित दुनिया भर के दसियों करोड़ लोग एक बड़े रोचक व दिलचस्प मामले में व्यस्त हो गए हैं और बहुत सी चीजों को हाशिए पर डाल दिया गया है। जो चीजें बड़ी रोचक हो गई हैं, उनमें से एक जॉर्ज फ्लॉयड की अदालती कार्रवाई है और इस मामले में मिनियापुलिस की सुरक्षा स्थिति। इसी प्रकार कोरोना वायरस के टीकाकरण में भेदभाव से काम लिए जाने के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स की सामने आई रिपोर्ट। अमेरिका में इस समय कोरोना से मरने वालों के बारे में भी बात नहीं की जा रही है, क्योंकि अमेरिका और विश्व की 67 वर्षीय प्रसिद्ध एंकर इस समय उस स्थान पर पहुंच गई हैं कि उसका दृष्टिकोण राष्ट्रपति को भी सफल बना सकता है। यहाँ मौजूद राजकुमार हैरी की पत्नी मेगान ने कहा, शाही परिवार नौजवान शिशु बच्ची के रंग को लेकर चिंतित था। उनके इस बयान से पूरी दुनिया में भूकंप सा आ गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया न देने को प्राथमिकता दी है। बैकिंग्स हाउस में सन्नाटा छाया हुआ है। प्रिंसेस डायना की कटु यादें ताजा हो गई हैं, अलबत्ता जीत ओपरा विनफ्री की ही हुई है, जिन्होंने एक साक्षात्कार दिया और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू को $90 लाख में CBS को बेच दिया। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस बातचीत को साहसिक बताया है। बहरहाल इस साक्षात्कार के प्रसारित होने के कई दिन बाद भी बैकिंग हाउस में रहने वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। शायद वे इस बात से चिंतित हैं कि वे जो भी कहेंगे नस्लवाद को उससे और ज्यादा हवा मिलेगी। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروتاؤں، ہماری سبھا کا انتم کارکرم ہوگا قرآن قصے پر، اس سے پہلے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سمبندھ میں پیش ہمارا وشیش کارکرم۔
پریہ شروتاؤں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے دکھد افسر پر وشیش کارکرم کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ اس دکھد افسر پر ہم آپ کی سیوا میں ہاردک سمویدنا پرستت کرتے ہیں۔ زہرا زیدی اور قمر عباس کا سلام سویکار کریں۔
آج عراق کا پوتر نگر کاظمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شوق میں ڈوبا ہوا ہے۔ عراق اور انیہ دیشوں سے ہزاروں شردھالو اور تیرتھ یاتری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شوق منانے کے لیے ان کے پوتر روزے میں ایکترت ہوئے ہیں۔ جو لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شوق منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں ان میں بوڑھے، جوان، مہیلائیں اور بچے سبھی شامل ہیں۔
پوتر نگر مکہ اور مدینہ کے بیچ ابوا نامک ایک استھان ہے، جہاں 7 صفر 128 ہجری قمری کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنم ہوا تھا۔ 148 ہجری قمری میں ان کے پتا امام جعفر صادق علیہ السلام شہید ہوئے۔ اس سمے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا کال آرمبھ ہوا۔ ستیہ بولنے اور بنی عباسی خلیفاؤں کا پردہ فاش کرنے کی وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنی آیو کے ادھکانش بھاگ کو بھیاوہ جیلوں میں بتانا پڑا، یہاں تک کہ 25 رجب 183 ہجری قمری میں ہارون رشید کی جیل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ جس وقت امام شہید ہوئے اس وقت ان کی آیو 55 ورش تھی۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کئی اپادھیاں ہیں، جن میں سب سے ادھک پرسدھ اپادھی باب الحوائج ہے۔ اسی پرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایشور کی اور باب الحوائج ارتھات ضرورتوں کے دوار کی اپادھی دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی اپنی ضرورت امام کے پاس لے کر جاتا تھا امام اسے پورا کرتے تھے اور وہ کبھی بھی امام کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ شافعی مت کے ودوان ابن حجر ہیثمی اس بارے میں کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراقی لوگوں کے نکٹ باب الحوائج کے نام سے پرسدھ ہیں۔ اسی پرکار مالکی دھرم شاستری ابن سباغ بھی کہتے ہیں، عراقی لوگوں کے نکٹ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج اللہ ارتھات ایشور کی اور ضرورتوں کے دوار کی اپادھی سے پرسدھ ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے ان کا واسطہ دے کر ایشور سے اپنی حاجت مانگی اور وہ پوری ہو گئی۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دھارمک، شیکشک، راجنیتک اور پرشکشن آدی کے نیترتو کا دور آرمب ہوا۔ جس سمے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مارگدرشن کا کال آرمب ہوا، راجنیتک واتاورن اور پرستھتیاں بہت سخت تھیں اور امام کا جیون خطرے میں تھا۔ اسی کارن امام جعفر صادق علیہ السلام جب جیوت تھے تبھی انہوں نے لوگوں سے بتا دیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے اترادھیکاری ہوں گے۔ اس پرکار عباسی خلیفہ منصور کے اس کارکرم پر پانی پھر گیا جس میں وہ امام کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ منصور کے مرنے کے بعد مہدی اور ہادی ستہ میں پہنچے۔ ان دونوں کا شاسن کال 25 ورشوں تک لمبا کھینچا اور وشیش کر مہدی کے شاسن کال میں پیغمبر اسلام کے پوتر پریجنوں اور ان کے چاہنے والوں کے لیے اپیکشاکرت آزادی پراپت ہو گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے افسر کو اچھا ماننا اور لوگوں کے مارگدرشن کے لیے پریاس کیا۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک اپادھی کاظم تھی۔ یہ اپادھی تھی جو سمست اچھائیوں و سدگنوں کو اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔
यही कारण था कि इस्लामी समाज के विभिन्न जातियों व गुटों, यहाँ तक कि गैर मुसलमानों के दिलों में भी इमाम का प्रभाव था। कुछ ने इमाम की उपासना देखी, कुछ ने इमाम का संयम व परित्याग देखा, कुछ ने देखा कि इमाम ने उनकी समस्या का समाधान कर दिया। इसी प्रकार इमाम की किसी न किसी अच्छाई को देखकर लोग उनके अनुयायी बन जाते थे। बहरहाल लोग इमाम से प्रेम करते थे। शाफी विद्वान इब्ने हजर हैसमी कहते हैं कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को इमामुल कुलूब अर्थात दिलों का इमाम कहा जाता था।
इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के जीवन का एक भाग हारून रशीद के शासनकाल में बीता। हारून रशीद 170 हिजरी कमरी में सत्ता में पहुंचा और उसका दिल पैगम्बर इस्लाम के पवित्र परिजनों और अलवियों के द्वेष से भरा हुआ था और इसमें वो मशहूर था। इमाम को उस समय बहुत अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना हुआ। लोग इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से प्रेम करते थे। इमाम लोगों के दिलों पर शासन करते थे। ये वो वास्तविकता थी जिसे सब स्वीकार करते थे, यहाँ तक कि हारून रशीद भी इस विशेषता को स्वीकार करता था। इब्ने हजर हैसमी इमाम की इस विशेषता के बारे में लिखते हैं, एक दिन इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम खाने काबा के पास बैठे हुए थे तो जब हारून की नजर इमाम पर पड़ी तो उसने इमाम से कहा, तुम वही हो जिससे लोगों ने गोपनीय ढंग से बैत कर रखी है? इमाम ने फरमाया, मैं दिलों का इमाम हूँ, तू शरीरों का इमाम है।
वास्तव में इमाम ने अपनी इस बात से हारून रशीद को यह समझा दिया कि तेरा शासन लोगों के शरीरों पर है और तेरी सरकार भौतिक और उसका आधार जोर जबरदस्ती है, जबकि मेरी सरकार लोगों के दिलों पर है। लोगों के दिल मेरे साथ हैं, परंतु उनके शरीर तेरे बंधक हैं। इसी कारण इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेने के बजाय हारून रशीद ने इमाम से और कड़ाई से पेश आने, यहाँ तक कि उन्हें शहीद करने का निर्णय किया।
हारून रशीद सत्ता में पहुंचा ही था कि उसने इमाम को काल कोठरी में डाल दिया। कभी वो इमाम को बसरा में तो कभी बगदाद की जेलों में बंद करवाता था। ये वो विषम समय था जो दूसरे समय से भिन्न था, क्योंकि हारून रशीद सदैव इमाम को अपमानित करने और उनके स्थान को कम करने की चेष्टा में रहता था। उस कठिन व विषम परिस्थिति में भी इमाम ने ईश्वरीय दायित्व के निर्वाह के लिए पूरा प्रयास किया। वो हारून रशीद की चालों को बहुत अच्छी तरह समझते थे और वो ये भी जानते थे कि हारून अंत में उन्हें शहीद करवा देगा। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के अनुसार मस्जिद के हर भाग में महान ईश्वर की उपासना की जा सकती है। जितना अधिक इमाम से कड़ाई की जाती थी उतना ही अधिक वो महान ईश्वर के सामिप्य का आभास करते थे और नमाज और धैर्य से सहायता लेते थे। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने कारावास को महान ईश्वर की उपासना स्थल में बदल दिया था और एकांत के घर को ईश्वरीय प्रेम के घर में परिवर्तित कर दिया था। दिनों को रोजा रखते थे और रातों को महान ईश्वर की उपासना करते थे। इमाम के कारावास में रहने के दौरान एक जेलर कहता है, इमाम ईश्वर का धन्यवाद करते थे कि उसने उपासना के लिए एक स्थान उपलब्ध करा रखा है। जी हाँ, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ऐसे समय में रहते थे जब पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों को यातना देना और उनकी गिरफ्तारी अब्बासी खलीफाओं के लिए सामान्य बात हो चुकी थी।
समाज में इमाम नाव चलाने वाले की भांति होता है जो समुद्र की लहरों और समस्याओं से घिरी नाव को किनारे लाता है। इस आधार पर इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने पूर्वजों की भांति लोगों के मार्गदर्शन में अपनी जिम्मेदारी का आभास किया और जब भी जहां भी कमी देखते थे वहां इस्लामी समुदाय का मार्गदर्शन करते थे। इतिहास में आया है कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम समस्त सद्गुणों से सुसज्जित बहुत बहादुर व दानी हस्ती थे। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ दान लोगों के जीवन में बरकत का कारण बनता था, इस प्रकार से कि लोग कहते थे कि आश्चर्य है उस व्यक्ति से जिसे इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के दिरहम की थैली मिल जाए और फिर भी वो निर्धनता की शिकायत करे। प्रसिद्ध इस्लामी इतिहासकार इब्ने शहराशूब इमाम की प्रशंसा में लिखते हैं, वो अपने समय के सबसे बड़े धर्मशास्त्री और ईश्वरी किताब के सबसे बड़े ज्ञानी थे। पवित्र कुरान की तिलावत बहुत अच्छी ध्वनि के साथ करते थे और लोगों में धार्मिक जानकारी सबसे अधिक उनके पास थी और बात करने में वे बहुत दक्ष व निपुण थे।
धार्मिक किताबों में इस बात का उल्लेख बहुत अधिक मिलता है कि लोगों को चाहिए कि वे सदैव मृत्यु और प्रलय के दिन की याद में रहें। पैगंबर इस्लाम और समस्त इमाम सदैव मृत्यु की याद में रहते थे। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम भी दूसरे इमामों की भांति सदैव मौत की याद में रहते थे और नमाजों व दुआओं में जिन चीज़ों को बहुत याद करते थे उनमें से एक मृत्यु थी। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का सजदा बहुत लंबा होता और वे अपने सजदों में इस दुआ को बारंबार पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकर राहा इंदल मौत व अल अफ इंदल हिसाब, यानी हे पालनहार, तुझसे प्रार्थना व विनती करता हूँ कि मेरी मौत आसान हो और प्रलय के दिन मुझे माफ कर दे। यही सोच और ईश्वरीय भय था जिसके कारण इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम नमाजों में रोते थे और इस प्रकार से कि उनके आंसू उनकी दाढ़ी से टपकने लगते थे। इमाम फरमाते थे, पालनहार, तेरे बंदे का पाप बड़ा है तो तेरी माफी भी बड़ी होनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर आप सबकी सेवा में इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर हार्दिक संवेदना प्रस्तुत करते हैं।
قرآن قصے، मित्रों कार्यक्रम कुरानी किस्से की नई कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है। कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में हम सूरह आले इमरान की 186वीं आयत की व्याख्या पेश करेंगे। दोस्तों, आज हम जिस आयत की समीक्षा करने जा रहे हैं उसका संबंध पवित्र कुरान के तीसरे सूरे से है। इस आयत में बताया गया है कि ईश्वर अपने बंदों का विभिन्न ढंग से इम्तिहान लेता है, इसलिए हमें सदैव ही इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। ईश्वर का इम्तिहान कई प्रकार से हो सकता है। हो सकता है कि वो धन संपत्ति से इम्तिहान ले, हो सकता है कि वो संतान से इम्तिहान ले, ये भी हो सकता है कि वो विपत्ति देकर इम्तिहान ले। इसलिए हमारा काम ये भी है कि हम ईश्वरीय परीक्षा के लिए सदैव तैयार रहें। पवित्र मक्का नगर अपने भीतर पाए जाने वाले हर प्रकार के मानवीय आकर्षणों के बावजूद अब मुसलमानों के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा था। मुसलमानों पर अनेकेश्वरवादियों के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। मुसलमानों को दी जाने वाली यातनाएं इतनी अधिक बढ़ चुकी थीं कि वे अब अपनी ही मातृभूमि को छोड़कर जाने के लिए विवश हो रहे थे। मुसलमानों पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि वे अपने धर्म को छोड़ दें। मुसलमानों से उनका धर्म छुड़वाने के उद्देश्य से मक्के के अनेकेश्वरवादी उनके विरुद्ध हर प्रकार के हथकंडे अपना रहे थे। अनेकेश्वरवादियों के अत्याचारों, यातनाओं और लांछनों से तंग आकर मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीने जाने का फैसला कर लिया। मदीना वासियों ने मुसलमानों का स्वागत करते हुए उनको अपने नगर में ठहराया। कुछ समय गुजरने के बाद वहां पर भी उनको यहूदियों के ताने सुनने पड़े और मुसलमानों के विरुद्ध मदीने में भी शत्रुओं ने एक नया मोर्चा खोल दिया। Thank you.
मदीने का एक अत्याचारी यहूदी था काब बिन अशरफ। वैसे तो वह एक कवि था, किंतु अपनी कविताओं में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और मुसलमानों को वो बहुत बुरा भला कहा करता था। लोगों को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हमला करने या उनकी हत्या के लिए भी वो उकसाता रहता था। अपनी कविताओं में वो मुसलमान पुरुषों और महिलाओं सबका अनादर करते हुए उनका अपमान किया करता था। काब बिन अशरफ का बाप बनी नभान कबीले से संबंध रखता था। उसकी माँ यहूदियों के कबीले बनी नज़ीर से संबंध रखती थी। जब काब बिन अशरफ का बाप मर गया तो उसकी माँ उसे अपने भाइयों के पास ले आई। इस प्रकार अशरफ का पालन पोषण यहूदियों के कबीले बनी नज़ीर में हुआ। वो बहुत पैसे वाला था। काब बिन अशरफ का किला मदीने के दक्षिण में बनी नज़ीर मोहल्ले के पीछे स्थित था। बद्र के युद्ध में मुसलमानों की विजय और कुरैश कबीले के कुछ सरदारों के मारे जाने की सूचना जब काब बिन अशरफ को मिली तो उसने बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि क्या ये सच है। बिन अशरफ ने कहा कि ये तो अपने समय के महान लोग थे। ईश्वर की सौगंध, अगर वास्तव में मुहम्मद ने इन लोगों को मारा होगा तो इसका बदला अवश्य ही लिया जाएगा। इसलिए उसने मदीने के यहूदियों को मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। काब बिन अशरफ ने मदीने में रहकर ही पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों को बुरा भला ही नहीं कहा, बल्कि मक्का जाकर उसने बद्र के युद्ध में मारे जाने वाले कुरैश के सरदारों की सराहना की और मुसलमानों के खिलाफ शेर पढ़े। अपने शेरों और कविताओं के माध्यम से काब बिन अशरफ ने ये प्रयास किया कि कुरैश के दिलों में पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में नफरत भरी हुई है उसे और बढ़ाया जाए। उसने मक्के में अपनी कविताओं के माध्यम से वहां के रहने वालों को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के विरुद्ध खूब उकसाया। जिस समय अशरफ मक्के में था तो अबू सुफियान और कई अन्य अनेकेश्वरवादियों ने उससे ये पूछा था कि तुम्हारे निकट क्या हमारा धर्म अच्छा है या मोहम्मद और मुसलमानों का, तुम्हारे निकट हम बेहतर हैं या मोहम्मद और उनका धर्म। अशरफ ने जवाब दिया कि तुम सही रास्ते पर हो और उनसे बेहतर हो। इसी बीच सूरह निसा की 51वीं आयत नाजिल हुई जिसका अनुवाद है, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें ईश्वरीय किताब के ज्ञान का कुछ भाग दिया गया था, किस प्रकार से वे मूर्तियों और मूर्ति पूजा करने वालों पर ईमान लाए और काफिरों के बारे में कहने लगे कि ये लोग इस्लाम लाने वालों से अधिक मार्गदर्शित हैं। उहद के युद्ध के पश्चात मदीने के यहूदियों का एक गुट मक्के के अनेकेश्वरवादियों के पास गया ताकि मुसलमानों के विरुद्ध उनसे सहयोग करे। उस गुट ने अनेकेश्वरवादियों को प्रसन्न करने के लिए उनकी मूर्तियों के समक्ष सजदा किया और ये कहा कि तुम्हारी मूर्ति पूजा मुसलमानों के ईमान से कहीं बेहतर है। यद्यपि यहूदियों ने पैगम्बर इस्लाम से समझौता किया था कि वे मुसलमानों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे, परंतु उन्होंने अपने इस समझौते को तोड़ दिया और मुसलमानों के विरुद्ध कुरैश के सरदारों के साथ हो गए। ये बात गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहूदियों की षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति को दर्शाती है। यहूदियों को हालांकि आसमानी किताब का ज्ञान था, परंतु उन्होंने अनेकेश्वरवादियों के भ्रष्ट विश्वासों को इस्लाम पर वरीयता दी, यहाँ तक कि वे अनेकेश्वरवादियों की सहायता करके इस्लाम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए। यही महापाप ईश्वर द्वारा उन पर लानत व धिक्कार और ईश्वरीय दया से उनके दूर होने का कारण बना। यहूदियों में इस्लाम के विरुद्ध द्वेष इस हद तक है कि वे इस्लाम का मुकाबला करने के लिए अधर्मी काफिरों से भी समझौता कर सकते हैं, अतः हमें उनके प्रति सचेत रहना चाहिए। ये एक वास्तविकता है कि द्वेष व शत्रुता की भावना मनुष्य की आँख कान और जबान को सत्य देखने, सत्य सुनने और सत्य कहने से रोक देती है। जो लोग इस्लाम का विरोध करते हैं उसका कारण ये नहीं है कि इस्लाम बुरा है, बल्कि इसका मुख्य कारण यह है कि इस्लाम उनके सांसारिक हितों की पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा है। मनुष्य का वास्तविक सहायक ईश्वर ही है। जो कोई भी अपने कर्मों द्वारा ईश्वरीय दया को स्वयं से दूर कर लेता है, वह वास्तव में अपने सहायक को खुद से दूर करता है। मक्के के लोगों को पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध उकसाने के बाद काब बिन अशरफ मदीने वापस आया। वहां पहुंचकर उसने फिर मुसलमानों के विरुद्ध लोगों को उकसाने का काम शुरू कर दिया। वास्तव में अशरफ ने मदीने में फिर से मुसलमानों को बुरा भला कहना और उनका अपमान करना आरंभ कर दिया। वो चाहता था कि मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न किए जाएं। अशरफ की बातें जब हद से बढ़ गईं, तो पैगंबर इस्लाम ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा था कि कौन है जो अशरफ के बेटे से मुक्ति दिलाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर वहां पर उपस्थित मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा कि हे रसूल खुदा, मैं इस काम को अंजाम दूंगा। इस घटना के कुछ दिनों के बाद पैगंबर इस्लाम को पता चला कि मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने खाना पीना बंद कर दिया है। उन्होंने मुस्लिमा को बुलाकर कहा कि तुमने खाना पीना क्यों छोड़ रखा है। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने आपको वचन दिया है, अब मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैं उसको पूरा कर भी पाऊँगा या नहीं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि तुम प्रयास करो और इस बारे में साद बिन माज से विचार विमर्श कर लो। मुस्लिमा ने पहले अबू नायला सहित कुछ लोगों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया और फिर वे सब लोग पैगंबर इस्लाम की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि हे रसूल, हम काब बिन अशरफ की हत्या करके ही रहेंगे। आप केवल हमें इस बात की अनुमति दीजिए कि हम अपने हिसाब से योजना बनाकर उस पर अमल करें। यहाँ पर इस बात का उल्लेख ज़रूरी है कि मोहम्मद बिन मुस्लिमा और अबू नायला दोनों ही काब बिन अशरफ के रजाई भाई थे। अपनी योजना के अनुसार एक बार मुस्लिमा काब बिन अशरफ के पास गए और उन्होंने उससे बात करना शुरू कर दी। जब थोड़ी देर बात हो गई तो मुस्लिमा ने अशरफ से पूछा कि तुम बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने हल्के से बिन अशरफ से कहा कि मोहम्मद के आने से हमारे लिए कई तरह की मुश्किलें पैदा हो गई हैं। हमारे लिए अब जीवन गुजारना कठिन होता जा रहा है। मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार समस्याओं से घिर गया है। वे हमसे ज़कात लेते हैं जबकि खुद हमारे पास खाने को नहीं है। उन्होंने हमको परेशानियों में डाल दिया है। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। मुस्लिमा ने अशरफ से कहा कि देखो, मैंने जो कुछ अभी कहा है उसको तुम किसी को ना बताना। मुस्लिमा ने बताया कि मेरे कुछ साथी भी मेरी तरह के विचार रखते हैं जिनको मैं तुम्हारे पास लाना चाहता हूँ। बाद में मुस्लिमा अपने साथियों के साथ अशरफ के पास पहुँचे। जब वे अशरफ के किले में पहुँचे तो उन्होंने उसे वहाँ से आवाज़ दी। वो अपने किले से बाहर आया। वे सब लोग मदीने के निकट एक स्थान की ओर चलने लगे जिसका नाम था शरजुल अजूज। इसी बीच मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने मौका देखकर काब बिन अशरफ का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वे लोग वापस मदीना आ गए। जिस समय वे लोग मदीना पहुंचे उस समय पैगंबर इस्लाम सुबह की नमाज की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान उनको इस्लाम के मुख्य शत्रु काब बिन अशरफ की मौत की खबर मिली। इसी समय सूरह आले इमरान की आयत संख्या 186 नाजिल हुई। इस आयत का अनुवाद है, निसंदेह तुम्हारे धन व माल तथा जान द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी और जिन लोगों को तुमसे पूर्व किताब दी गई है और इसी प्रकार से जिन लोगों ने किसी को ईश्वर के समकक्ष बना दिया है उनकी ओर से तुम बहुत यातनाएं झेलोगे। और जान लो कि यदि तुम संयम बरतो और केवल ईश्वर से डरो तो ये कर्मों की दृढ़ता की निशानी है। ये आयत ईश्वर की एक महान परंपरा अर्थात परीक्षा की ओर संकेत करते हुए मुसलमानों से ये कहती है कि मत सोचो कि इस्लाम लाने से तुम्हें आराम प्राप्त हो जाएगा, बल्कि तुम्हें सदैव शत्रुओं की ओर से षड्यंत्रों और यातनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि यदि तुम उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो तब भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। मुसलमानों के शत्रु किसी न किसी रूप में अपने कुफ्र व अपनी शत्रुता को प्रकट करते ही रहेंगे। इतिहास में मिलता है कि जब मुसलमानों ने मक्के से मदीने की ओर पलायन किया था तो अनेकेश्वरवादी उनके धन व संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहे थे। वे अन्य मुसलमानों को मौखिक रूप से भी घाव लगाते थे। दूसरी ओर मदीने के यहूदी भी मुसलमानों को ताने देकर या मुस्लिम महिलाओं का अनादर करके उन्हें यातनाएं दिया करते थे। ये कार्य इतना बढ़ गया था कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस अभियान के अगुआ की हत्या का आदेश दिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अनुमति चाहते हैं। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने कार्यक्रम सुना कुरानी किस्से। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, hindi@wsirib.ir। हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.